कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी अदालत की कार्रवाई चल रही है।
ठीक है।
हाँ, तो एक बेहद तेज तर्रार सरकारी वकील बहस कर रहा है और वो आपके सबसे बड़े दुश्मनों के, मतलब उन लोगों के जिनसे आप सख्त नफरत करते हैं, उनके अपराधों की बखिया उधेड़ रहा है।
अच्छा।
आप दर्शक दीर्घा में बैठे तालियां बजा रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं कि आखिरकार उन बुरे लोगों को सजा मिल रही है। लेकिन तभी अचानक वो वकील मुड़ता है, सीधा आपकी तरफ उंगली उठाता है और भरी अदालत में कहता है कि तुम भी उतने बड़े अपराधी हो।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका है।
बिल्कुल। आज से लगभग 2000 साल पहले प्रेरित पॉल यानी संत पॉलुस ने ठीक यही जाल बिछाया था और आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इसी ऐतिहासिक और धार्मिक झटके पर आधारित है।
हाँ, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा रोमियो की पत्री मतलब रोमन्स के अध्याय 2 और 3 पर दिया गया एक बेहद विस्तृत लेक्चर है।
सही कहा। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे पॉल ने अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक अहंकार को चकनाचूर कर दिया था और ये साबित किया कि चाहे किसी के पास कितना भी धार्मिक ज्ञान क्यों ना हो, नैतिक रूप से पूरी मानवता एक ही कटघरे में खड़ी है।
बिल्कुल, एक ही धरातल पर।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। और ये चर्चा उन सभी के लिए है जो ज्ञान के भारी भरकम बोझ तले दबे बिना किसी भी विषय की गहराई में जाना पसंद करते हैं।
हाँ, क्योंकि ये कोई उबाऊ लेक्चर नहीं है।
एकदम नहीं, ये तो जानकारी का एक सफर है। तो अगर हम डॉक्टर कीनर के इस लेक्चर की शुरुआत देखें तो रोमन्स के पहले अध्याय में पॉल ये साबित कर रहे थे कि जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, वो पूरी तरह से भटके हुए हैं।
और ये सुनकर उस समय के जो धार्मिक लोग थे वो तो बहुत खुश हुए होंगे।
बिल्कुल, उन्हें लगा होगा कि पॉल उनकी तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन अध्याय 2 की पहली ही पंक्ति में आकर वो अचानक से आह उसी अदालत वाले वकील की तरफ पासा पलट देते हैं।
हाँ, और मैं बता दूं कि ये अचानक से पासा पलटना कोई इत्तेफाक नहीं था, ना ही ये पॉल के विचारों का कोई भटकाव था।
तो फिर ये क्या था?
ये एक बहुत ही सोची समझी और मतलब धारदार रणनीति थी। डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि पॉल यहाँ डाइट्राइब नाम की एक प्राचीन शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं।
डाइट्राइब? एक सेकेंड, ये डाइट्राइब आखिर है क्या?
इस शैली में बोलने वाला व्यक्ति एक काल्पनिक विरोधी खड़ा करता है, मतलब एक इमेजिनरी इंटरलॉक्यूटर, और उससे सरेआम बहस करता है।
अच्छा, खुद ही सवाल पूछना और खुद ही जवाब देना।
बिल्कुल, उस दौर में एपिक्टीटस जैसे महान स्टोइक दार्शनिक भी इसी तकनीक का बहुत इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ एक बोलने का तरीका नहीं है बल्कि ये बहसों को जीतने का एक अचूक हथियार है।
समझ गई। इसका फायदा ये होता है कि आप सामने वाले के जो संभावित तर्क हैं, उनको उसके मुंह खोलने से पहले ही ध्वस्त कर देते हैं।
एकदम सही। पॉल ने अपने जीवन में अलग अलग यहूदी सभाओं में इतनी बहसें की थी कि उन्हें रटा हुआ था कि सामने से क्या जवाब आने वाले हैं या क्या बचाव आने वाले हैं।
ये तो वाकई उसी शातिर वकील की तरह है जो जज के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे पता है बचाव पक्ष अब ये दलील पेश करने वाला है और मैं आपको बताता हूँ कि वो दलील बुनियादी रूप से क्यों गलत है।
हाँ, एकदम सटीक तुलना है। और इसी कोर्टरूम वाले अंदाज में पॉल एक बहुत ही मजबूत तर्क श्रृंखला खड़ी करते हैं जिसे दर्शन शास्त्र में सिलोजिज्म कहा जाता है।
सिलोजिज्म, वो कैसे काम करता है यहाँ?
देखिए, वो कहते हैं पहली बात, लोग पाप करते हैं।
ठीक है।
दूसरी बात, ऐसे पाप ईश्वर के न्याय के लायक हैं क्योंकि ईश्वर पवित्र है और इसका अटल निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकता।
ये एक ऐसा जाल था जो उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों के लिए बिछाया था जो खुद को तो धर्मी मान रहे थे लेकिन दूसरों पर उंगली उठा रहे थे।
बिल्कुल। इसके बाद डॉक्टर कीनर एक बहुत ही दिलचस्प संरचना की बात करते हैं जो रोमियो 2.6 से 11 के बीच पाई जाती है। इसे कायस्टिक स्ट्रक्चर कहा जाता है।
हाँ, मैंने अपने नोट्स में इस कायस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। ये एक तरह का उल्टा समानांतर ढांचा है जिसे हम ABCBA के रूप में देख सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल वही।
मतलब जहाँ शुरुआत में ए वाले हिस्से में ये कहा गया है कि ईश्वर सबको उनके कामों के अनुसार फल देता है और बिल्कुल अंत में फिर से वही बात घुमाकर कही गई है कि ईश्वर बिना किसी भेदभाव के ऐसा करता है,
और बीच के हिस्से में अच्छे कामों के इनाम और बुरे कामों की सजा का जिक्र है।
सही।
लेकिन मेरा यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है।
हाँ, पूछिए।
मैं सोच रही थी कि क्या उस दौर के आम लोग जो शायद बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे इस तरह के जटिल और गणितीय कायस्टिक ढांचे को सच में समझते थे।
ये एक बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये शायद सिर्फ आज के बड़े बड़े विद्वानों के लिए ही है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर प्राचीन किताबों में इन पैटर्न्स को ढूंढते हैं।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर में लोग इस तरह की दोहराव वाली शैली के वाकई बहुत आदि थे।
सच में?
हाँ, देखिए, आज के आधुनिक युग में हम चीजों को कागज या स्क्रीन पर पढ़ते हैं, है ना, इसलिए हम पैराग्राफ्स में सोचते हैं, लेकिन उस समय की संस्कृति मुख्य रूप से मौखिक थी, ओरल कल्चर था।
अच्छा, मतलब जानकारियां सुनकर याद रखी जाती थी।
बिल्कुल, ये जो ए बी सी बी ए वाला पैटर्न है, ये दरअसल एक ऐसी तकनीक थी जो सुनने वालों के दिमाग में मुख्य बात को हमेशा के लिए अंकित कर देती थी।
तो जब श्रोता किसी बात को इस तरह से एक लय में सुनते थे तो वे तुरंत समझ जाते थे कि वक्ता बात के बिल्कुल केंद्र में क्या कहना चाहता है।
एकदम सही पकड़ा। और यहाँ उस ढांचे के केंद्र में क्या है? केंद्र में है ईश्वर का निष्पक्ष न्याय। ईश्वर यह नहीं देखेगा कि कोई व्यक्ति किस जाति, धर्म या खानदान से आता है। उसका न्याय कर्मों पर आधारित होगा,
पहचान पर नहीं।
बिल्कुल।
लेकिन अगर ईश्वर का न्याय पूरी तरह से निष्पक्ष है और वो किसी का पक्ष नहीं लेता, तो यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है।
वो क्या?
उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कभी कोई लिखित कानून, कोई धार्मिक ग्रंथ या मूसा की व्यवस्था पहुंची ही नहीं। मतलब अगर किसी को पता ही नहीं है कि खेल के नियम क्या हैं, तो उसे नियम तोड़ने की सजा कैसे दी जा सकती है? ये तो सरासर अन्याय होगा ना।
और यही वो स्वाभाविक सवाल है जो पॉल के श्रोताओं के मन में भी उठ रहा था।
तो पॉल इसका क्या जवाब देते हैं?
डॉक्टर कीनर बताते हैं कि यहाँ से पॉल की चर्चा एक नई दिशा में मुड़ती है, जिसे अंतरात्मा यानी कंसाइंस और प्रकृति का नियम कहा जाता है।
प्रकृति का नियम?
हाँ, ग्रीको रोमन और यहूदी दुनिया में ये कोई नया विचार नहीं था। उदाहरण के लिए, यहूदी परंपरा में नूह के नियम माने जाते थे, जिन्हें नोआहाइड लॉस कहते हैं।
अच्छा, जिनके बारे में उनका विश्वास था कि वे पूरी मानव जाति पर लागू होते हैं, चाहे वो यहूदी हों या नहीं।
बिल्कुल। डॉक्टर कीनर कहते हैं कि पॉल का तर्क ये है कि जिन लोगों के पास लिखित कानून नहीं है, वे भी अपनी अंतरात्मा के कारण मौलिक रूप से सही और गलत में अंतर जानते हैं।
मतलब जब वे कोई काम करते हैं तो उनके अपने ही विचार या तो उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने गलत किया, या उनका बचाव करते हैं।
हाँ, अब यहाँ एक बहुत गहरी दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय बहस है। विद्वान इस बात पर बटे हुए हैं कि आखिर रोमियो अध्याय 2 में जिन नैतिक रूप से सही लोगों का जिक्र है, वो कौन है।
तो डॉक्टर कीनर का इस पे क्या रुख है?
डॉक्टर कीनर का स्पष्ट मानना है कि सिद्धांत रूप में ये अंतरात्मा की बात है, जिससे हर इंसान वाकिफ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में पूरी तरह से नैतिक जीवन जीना तभी संभव है जब मसीह के द्वारा इंसान का हृदय बदल जाए।
यहाँ बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
वो कैसे?
अंतरात्मा वाली ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे देश का कोई आम नागरिक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देश का पूरा संविधान या दंड संहिता की कोई किताब नहीं पढ़ी है।
हाँ, बिल्कुल।
उसे कानूनी भाषा नहीं पता, उसे नहीं पता कि धारा 302 क्या है, लेकिन उसे अपने अंदर की एक गहरी आवाज से ये पता है कि किसी बेगुनाह की हत्या करना बुनियादी रूप से गलत है।
एकदम सही एनालॉजी है। कानून की किताब का ना होना उस व्यक्ति को हत्या करने की छूट नहीं देता, और यहीं पर पॉल का वो काल्पनिक विरोधी, जो खुद को बहुत धर्मी मान रहा था, वो पूरी तरह से फंस जाता है।
जरा सोचिए, अगर बिना कानून वाले लोग भी सही गलत जानते हैं, तो जिनके पास लिखित कानून है, जो पीढ़ियों से खुद को धर्म के ठेकेदार मानते आए हैं,
उनकी स्थिति तो नैतिक रूप से और भी मजबूत होनी चाहिए, है ना?
हाँ, और भी पवित्र होनी चाहिए। लेकिन रोमियो 2:17-20 के बीच पॉल इस धार्मिक अहंकार पर सबसे करारा प्रहार करते हैं। मैंने देखा कि पॉल का ये काल्पनिक विरोधी 11 अलग अलग धार्मिक दावा करता है।
बिल्कुल, वो सीना तान कर कहता है कि मैं कानून जानता हूँ, मैं अंधों की लाठी हूँ, मैं मूर्खों का शिक्षक हूँ।
हाँ, और मेरे पास सत्य का ज्ञान है। ये 11 दावों की जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये सुनने में कितनी अहंकारी लगती है।
बिल्कुल ज्यादा। लेकिन फिर पॉल इन 11 दावों को सिर्फ 5 सीधे सवालों से कैसे जमीन पर ला पटकते हैं, वो तकनीक कमाल की है।
मैंने पढ़ा है कि वो यहाँ एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं, एनाफोरा।
हाँ, पॉल यहाँ एक शक्तिशाली अलंकारिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एनाफोरा कहा जाता है।
तो ये एनाफोरा काम कैसे करता है?
ये कैसी शैली है जहाँ कई वाक्यों की शुरुआत एक ही जैसे शब्दों से होती है? ये एक हथौड़े की चोट की तरह काम करता है, जो बार बार एक ही जगह पे पड़ता है,
ताकि एक लय बने और बात सीधे सामने वाले के दिल पे लगे।
बिल्कुल। पॉल पूछते हैं, तुम जो दूसरों को सिखाते हो, क्या खुद को नहीं सिखाते? तुम जो चोरी न करने का उपदेश देते हो, क्या खुद चोरी करते हो? तुम जो व्यभिचार न करने को कहते हो, क्या खुद व्यभिचार करते हो?
बाप रे, ये तो सीधा हमला है।
हाँ, डॉक्टर कीनर ने इस धार्मिक पाखंड को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया है।
अच्छा।
उन्होंने आज के सेमिनरी या धार्मिक शिक्षण संस्थानों के छात्रों का जिक्र किया।
अच्छा, आधुनिक उदाहरण।
हाँ, कई बार ऐसा होता है कि छात्र जब सालों की पढ़ाई के बाद धार्मिक डिग्री लेकर निकलते हैं तो वो गहरा ज्ञान उन्हें विनम्र बनाने के बजाय एक अजीब से अहंकार से भर देता है।
ये तो बहुत आम बात है।
डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि जब धार्मिक ज्ञान अहंकार का रूप ले ले तो वो मूर्ति पूजा का ही एक बहुत सूक्ष्म और खतरनाक रूप बन जाता है।
मूर्ति पूजा कैसे?
क्योंकि तब इंसान ईश्वर की महिमा करने के बजाय अपनी डिग्रियों और अपनी बौद्धिक उपलब्धियों की पूजा करने लगता है। ये तो बहुत तीखी और कड़वी सच्चाई है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने का मन कर रहा है।
हाँ, बताइए क्या सोच रही हैं आप।
मैं सोच रही हूँ कि आखिर ज्ञान पाने में बुराई क्या है? क्या पॉल पढ़ाई, शिक्षा और ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ है?
अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वो शिक्षा विरोधी थे।
हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति सालों तक कड़ी मेहनत करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है तो क्या वो कुछ गलत कर रहा है? क्या अज्ञानी बने रहना बेहतर है?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ज्ञान बिल्कुल भी समस्या नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पॉल खुद अपने समय के सबसे पढ़े लिखे और विद्वान लोगों में से एक थे।
हाँ, ये तो है।
उन्होंने गमालियल जैसे महान शिक्षक से शिक्षा ली थी। समस्या ज्ञान नहीं है, समस्या वो अहंकार है जहां लोग अपनी उस धार्मिक विरासत या शिक्षा का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं।
मतलब अपनी डींगे मारने के लिए। बिल्कुल, सारी प्रशंसा ईश्वर की होनी चाहिए, ना कि इंसान के ज्ञान की। डॉक्टर कीनर यहाँ इतिहास की एक वास्तविक घटना का जिक्र करते हैं जो मशहूर इतिहासकार जोसेफस के लेखों में मिलती है।
अच्छा, कौन सी घटना?
रोम के सम्राट टिबेरियस के शासनकाल में एक बहुत बड़ा पाखंड हुआ था। रोम में एक यहूदी व्यक्ति था जो खुद को मूसा के कानून का बहुत बड़ा शिक्षक बताता था।
तो उसने क्या किया?
उसने अपने इस ज्ञान का चोला ओढ़कर रोम की कुछ संभ्रांत महिलाओं का शोषण किया और उनसे भारी मात्रा में पैसे ऐंठे।
बाप रे।
और इस एक व्यक्ति के पाखंड का नतीजा क्या हुआ पता है? रोम के शासक इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे यहूदी समुदाय को रोम से बाहर निकाल दिया या उन्हें सेना में गुलाम बना लिया।
हे भगवान, ये ऐतिहासिक संदर्भ तो वाकई आंखें खोलने वाला है। एक व्यक्ति के पाखंड की सजा पूरे समुदाय को उठानी पड़ी।
इसीलिए पॉल इतनी सख्ती से कहते हैं कि तुम्हारे पाखंड के कारण बाहरी लोगों के बीच ईश्वर का नाम बदनाम होता है।
अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि पॉल पाखंड को लेकर इतने आक्रामक क्यों थे। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है।
वो क्या?
जब कानून का ज्ञान सिर्फ अहंकार बनकर रह जाता है और जीवन नहीं बदलता, तो फिर उन सदियों पुराने धार्मिक रीति रिवाजों और चिन्हों का क्या अर्थ रह जाता है?
हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यहीं से डॉक्टर कीनर बाहरी चिन्हों और अंदरूनी सच्चाई के बीच के टकराव की बात करते हैं। उस समय खतना एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान का चिन्ह था।
मतलब सर्कमसिजन।
हाँ, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी बल्कि उनकी पूरी अस्मिता थी। ये इतना बड़ा मुद्दा था कि हम आज इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
ऐसा क्यों?
डॉक्टर कीनर यहाँ एंटियोकस चतुर्थ एपिफेनीज के खौफनाक दौर का किस्सा याद दिलाते हैं। उस दौर में भारी शासकों ने यहूदी धर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था।
अच्छा, तो खतना करने पर सजा मिलती थी?
सजा? जिन माताओं ने ईश्वर के इस नियम का पालन करते हुए अपने बच्चों का खतना करवाया था उन्हें सीधे मार दिया गया।
ओहो,
ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सोचिए, जिस चिन्ह के लिए उनके पूर्वजों ने इतनी भयानक कीमत चुकाई हो, खून बहाया हो, वो चिन्ह उनके लिए कितना मायने रखता होगा।
वो उनके लिए सबसे बड़े गर्व का विषय था।
इतने बलिदान के बाद उस चिन्ह से उनका भावनात्मक जुड़ाव होना तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि फिर भी पॉल और यहाँ तक के पुराना नियम भी, जैसे व्यवस्था विवरण और लेवीय व्यवस्था में, हृदय के खतने की बात करते हैं।
बिल्कुल, स्पिरिचुअल सर्कमसिजन।
हाँ, उनका कहना है कि अगर आत्मा अंदरूनी रूप से नहीं बदली है तो शरीर पर मौजूद वो बाहरी चिन्ह कोई मायने नहीं रखता। मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाहूंगी।
हाँ, बताइए।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी व्यक्ति ने किसी बहुत ही मशहूर स्पोर्ट्स टीम की सबसे महंगी जर्सी पहन ली हो। जर्सी असली है, उस पर टीम का लोगो भी है।
अच्छा, ठीक है।
लेकिन उस व्यक्ति को उस खेल का एक भी नियम नहीं पता। वो कभी मैदान में नहीं उतरा, उसने कभी पसीना नहीं बहाया। सिर्फ जर्सी पहन लेने से तो कोई महान खिलाड़ी नहीं बन जाता ना।
बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। खिलाड़ी बनने के लिए खेल अंदर होना चाहिए, सिर्फ बाहर नहीं। डॉक्टर कीनर यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शब्द खेल को भी समझाते हैं, जो पॉल ने बहुत ही चतुराई से किया है।
कैसा शब्द खेल?
यहूदा शब्द, जिससे यहूदी शब्द निकला है, उसका मूल अर्थ होता है प्रशंसा यानी प्रेज।
अच्छा।
और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 में कबोध शब्द का जिक्र है, जिसका हिब्रू में अर्थ है महिमा या वजन। पॉल इन शब्दों के साथ खेलते हुए कह रहे हैं कि सच्चा यहूदा वो नहीं है जो बाहर से धार्मिक दिखकर लोगों से प्रशंसा चाहता है।
तो सच्चा यहूदी कौन है?
सच्चा यहूदी वो है जो अपने अंदरूनी जीवन से ईश्वर से प्रशंसा चाहता है। बाहरी दिखावा समाज को खुश कर सकता है, पर ईश्वर तो हृदय का वजन मापता है।
लेकिन अगर बाहरी चिन्ह और रीति रिवाज किसी को बचा नहीं सकते, और कानून जानने वाले लोग भी नैतिक रूप से उतने ही पापी हैं जितने बाहरी लोग।
हाँ, ये सवाल रोमियो के तीसरे अध्याय की शुरुआत में आता है।
हाँ, तो आखिर फिर इस लंबी धार्मिक विरासत का फायदा ही क्या है?
और पॉल इस सवाल से भागते नहीं है, वो कहते हैं कि इसका फायदा बिल्कुल था। सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्हें सबसे पहले ईश्वर के वचन मिले थे, उन्हें वो नैतिक सच पता था जो बाकी दुनिया को नहीं पता था।
लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी ना?
बिल्कुल। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वे कोई VIP हैं और ईश्वर के न्याय से बच जाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब इसराइल पाप करता है और ईश्वर उन्हें भी सजा देता है, तो इससे ईश्वर की निष्पक्षता दुनिया के सामने और चमक कर आती है।
हाँ, ये तो है।
यहाँ पॉल एक बेतुके तर्क का जिक्र करते हैं जो उनके विरोधी दे रहे थे। विरोधी कह रहे थे कि अगर हमारे पाप करने से ईश्वर की सच्चाई और भी महान दिखती है, तो क्या हमें और ज्यादा पाप नहीं करना चाहिए ताकि ईश्वर की और महिमा हो?
अरे बाप रे, ये तो वही बात हो गई कि कोई अपराधी कहे, मैं चोरी और खून इसलिए कर रहा हूँ ताकि पुलिस की काबिलियत और अदालत का न्याय पूरी दुनिया के सामने आ सके।
एकदम सही। ये तर्क ही अपने आप में हास्यास्पद है, और पॉल इसे पूरी तरह से नकार देते हैं। इसके बाद पॉल ये साबित करने के लिए कि पूरी मानवता एक समान पापी है, यहूदी ग्रंथों को एक साथ पिरोते हैं।
अच्छा, इसके लिए वो क्या करते हैं?
यहाँ डॉक्टर कीनर गेजेर हशावा नाम के एक बहुत ही पुरानी यहूदी व्याख्या तकनीक को समझाते हैं।
गेजेर हशावा, ये क्या होता है?
इसका मतलब है अलग अलग ग्रंथों को एक समान शब्दों या विचारों के आधार पर एक धागे में मोतियों की तरह पिरोना।
समझ गई।
पॉल भजन संहिता 14:51 और हलेल, जो कि फसा के त्योहार में गाए जाने वाला एक विशेष गीत था, इन सब को एक साथ जोड़ते हैं, और इस कड़ी में वो शरीर के अलग अलग अंगों का बहुत ही काव्यात्मक और भयानक तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि?
वो कहते हैं कि उनका गला एक खुली कब्र है, उनकी जीभ छल करती है, उनके होठों में सांप का जहर है, और उनका मुंह कड़वाहट से भरा है। वो दिखाते हैं कि कैसे मानव शरीर का हर अंग पाप से ग्रस्त है।
इसका मतलब कोई बचा ही नहीं?
बिल्कुल। इसका अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है कि हर मुंह बंद हो जाएगा। जब न्याय का दिन आएगा, तो कोई भी अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। ना कोई बाहरी व्यक्ति, ना कोई धर्म का महान ज्ञाता।
किसी के पास कोई बहाना नहीं बचेगा, सब खामोश हो जाएंगे।
इस बात को पुख्ता करने के लिए डॉक्टर कीनर यहूदी परंपरा से रब्बी अकीबा की एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी कहानी सुनाते हैं।
रब्बी अकीबा, वो कौन थे?
वो अपने समय के सबसे पवित्र और ज्ञानी लोगों में गिने जाते थे। कहानी ये है कि एक बार रब्बी अकीबा ने एक बेहद खूबसूरत औरत को देखा, जो असल में भेष बदलकर आया हुआ शैतान था।
अच्छा, फिर क्या हुआ?
उस औरत को देखकर वो इतने आकर्षित हुए कि अपनी सारी पवित्रता भूलकर वो खजूर के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए।
पेड़ पर चढ़ गए, सच में?
हाँ। और जब वो आधे रास्ते पहुंचे, तब शैतान ने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि अगर स्वर्ग में ये आदेश न होता कि तुम्हें बख्श दिया जाए, तो मैं तुम्हें यहीं से नीचे गिराकर मार डालता।
बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब कहानी है।
हाँ, लेकिन इस कहानी का मकसद ये साबित करना था कि बड़े से बड़े नैतिक, ज्ञानी और धार्मिक लोग भी पाप के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। इंसान का खुद पर घमंड करना बेकार है।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर सबके सब पापी हैं, चाहे वो कानून जानते हो या नहीं, तो उम्मीद कहाँ है?
बहुत बड़ा सवाल है।
अगर कानून की भूमिका सिर्फ ये है कि वो हमें आईना दिखाए, मैं इसे ऐसे सोचती हूँ जैसे कोई MRI मशीन हो।
MRI मशीन?
हाँ, कानून एक MRI मशीन की तरह है। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा देगी कि आपके शरीर में ट्यूमर कहाँ है।
बिल्कुल।
लेकिन वो MRI मशीन आपकी सर्जरी नहीं कर सकती, वो आपको ठीक नहीं कर सकती। तो अगर कानून सिर्फ हमारी बीमारी बता रहा है, तो समाधान क्या है?
बहुत ही शानदार एनालॉजी है। MRI मशीन सिर्फ निदान करती है, इलाज नहीं। और यही वो मोड़ है जहां डॉक्टर कीनर बताते हैं कि पॉल समाधान की तरफ बढ़ते हैं, और वो समाधान है विश्वास और ईश्वर का अनुग्रह।
अनुग्रह यानी ग्रेस।
हाँ, डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि कोई भी सिविल लॉ कभी किसी का हृदय नहीं बदलता, वो सिर्फ डर के जरिए अपराध को रोकता है। कानून आपको बताएगा कि स्पीड लिमिट क्या है, लेकिन वो आपके अंदर सावधानी से गाड़ी चलाने की इच्छा पैदा नहीं कर सकता।
एकदम सही बात है।
सही ठहराए जाने के लिए, यानी इंसान की अंदरूनी सर्जरी के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। और यहीं पर रोमियो 322 का वो बहुत ही मशहूर और गहरा व्याकरण का विवाद सामने आता है।
व्याकरण का विवाद? हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसका आखिर मतलब क्या है और इस एक वाक्य पर इतना विवाद क्यों है?
देखिए, ये विवाद सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि उद्धार की पूरी प्रक्रिया का है। सवाल ये है कि क्या ये सब्जेक्टिव जेनेटिव है?
मतलब?
अगर इसे सब्जेक्टिव माने तो इसका मतलब है मसीही की वफादारी, यानी जो काम यीशु मसीह ने क्रॉस पर किया सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना।
और दूसरा विकल्प क्या है?
या फिर ये ऑब्जेक्टिव जेनेटिव है, जिसका मतलब है मसीह में विश्वास, यानी उस काम पर हमारा अपना सक्रिय विश्वास और भरोसा।
तो विद्वान इस पर क्या कहते हैं?
कार्ल बार्थ और एंटी राइट जैसे कुछ बहुत बड़े आधुनिक विद्वान इसे सब्जेक्टिव मानते हैं, लेकिन डॉक्टर कीनर और उनके साथ ऑगस्टीन और लूथर जैसे पुराने दिग्गज विद्वान इसे ऑब्जेक्टिव मानते हैं।
और डॉक्टर कीनर ऐसा क्यों मानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जेनेटिव ही है?
क्योंकि अगर आप रोमियो और गलातियों की पत्रियों का पूरा संदर्भ देखें तो इस शब्द का लगातार इस्तेमाल मसीह पर विश्वास करने के अर्थ में ही हुआ है।
अच्छा, मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट यही इशारा करता है।
बिल्कुल, पॉल बार बार ये जोर दे रहे हैं कि इंसान को अपनी धार्मिक उपलब्धियों को छोड़कर मसीह पर विश्वास करना होगा। इसके तुरंत बाद रोमियो 3:23 में वो मशहूर पंक्ति आती है, सबने पाप किया है।
हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है।
यहाँ ग्रीक भाषा के एओरिस्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। यह एक ऐसा भूतकाल है जो किसी एक विशिष्ट घटना को भी दर्शा सकता है या एक संपूर्ण सत्य को भी।
तो इसका यहाँ क्या अर्थ निकलता है?
कुछ लोग इसमें आदम के मूल पाप को देखते हैं, लेकिन डॉक्टर कीनर कहते हैं कि यहाँ मुख्य बिंदु आदम नहीं है बल्कि ये है कि यहूदी और गैर यहूदी दोनों समान रूप से भटके हुए हैं।
दोनों ने अपने अपने तरीके से पाप किया है।
हाँ, और दोनों को समान रूप से मसीह में अनुग्रह की आवश्यकता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हम अपने आप को बचा सकते हैं?
मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का जवाब एक बड़ा नहीं है।
बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कीनर का स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी हमें अपनी कोशिशों या डिग्रियों के दम पर नहीं बचा सकता।
उद्धार सिर्फ ईश्वर पर निर्भर होने से मिलता है।
एकदम सही। जब आप अपनी धार्मिक या नैतिक उपलब्धियों का अहंकार छोड़ते हैं तभी आपके हाथ खाली होते हैं ताकि आप ईश्वर की कृपा को ग्रहण कर सकें।
क्या बात है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण के सूत्रों को एक साथ बांधें तो डॉक्टर कीनर ने पॉल के इस मास्टर क्लास को कितनी सटीकता से हमारे सामने रखा है।
पॉल ने शुरुआत में उन बाहरी लोगों पर आरोप लगाया जो नैतिक रूप से भटके हुए थे।
हाँ, और फिर उन्होंने बड़ी ही चतुराई से अपनों को घेरा।
बिल्कुल, उन्होंने बड़े ही नाटकीय ढंग से उन लोगों को आईना दिखाया जो कानून, ज्ञान और धर्म का अहंकार पाले बैठे थे।
उन्होंने साबित किया कि ज्ञान बिना बदलाव के सिर्फ पाखंड है।
एकदम सही।
और अंत में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सारी मानवता को एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जहां हर मुंह बंद है, किसी के पास कोई बहाना नहीं है और सभी को एमआरआई मशीन के उस सच के बाद ईश्वर के अनुग्रह रूपी सर्जरी की सख्त जरूरत है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष है।
अब इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार उत्पन्न होता है जो मैं अंत में छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, अगर इतिहास में बाहरी धार्मिक चिन्ह, सदियों पुरानी परंपराएं और बड़े बड़े कानूनों का सटीक ज्ञान किसी इंसान को अंदरूनी तौर पर नहीं बदल सका, तो आज हम अपनी पहचान और अपना अहंकार किन खोखले बाहरी लेबल्स पर बना रहे हैं?
बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।
क्या हमारी आधुनिक सफलताएं, हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां या सोशल मीडिया पर दिखने वाली हमारी वो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ वाली चमचमाती इमेज, क्या ये सब भी वही काम नहीं कर रहे हैं जो उस समय के धार्मिक अहंकार और मूर्ति पूजा ने किया था? क्या हम आज भी किसी ऐसे ही भ्रम में नहीं जी रहे हैं?